ये प्रभु हम तो ब्रह्म लोक जा रहे थे किंतु तो अब्रह्म लोक नहीं जाएंगे, अब पहले आपका दर्शन कर लें इसके बाद में जैसा उनको बैकुंठ लोक। ऐसे ही और ऋषि मुनि लोग उनके पास में आए, जैसा जो चाह प्रभु हमको मुक्ति चाहिए। अधिकांश लोगों ने उस समय मुक्ति मांगा भक्ति सबरी ने और उनके गुरु मातंग ऋषि
जटायु,
वो पहले ही चले गए जटायु, ये सब भक्ति मांगते। और अधिकांश लोग ब्रह्म ऋषि थे, उन लोगों ने उनसे मुक्ति इत्यादि की मांग की, उन्होंने जो कुछ कहा मांगा उनको वो दे दिया। अब ये लोग अपने भावों को गए तो रामचंद्र जी को देखा, स्तुति स्तुति की, प्रणाम किया, और जो बात कहने वाली थी लज्जा के मारे कह ना सके। क्या मांगना था उनको? ये कहना था हम लोगों ने श्रुतियों के भावों को सुना है और हम लोग गोपियों ने, वो लोग गोपी होकर के कृष्ण की जो सेवा की है, गोपियों की सेवा की है, हम भी उसी प्रकार से काम युक्त होकर के कृष्ण के का रूप और उनका उपभोग करना चाहते। काम, कामना शब्द वहां पर भी आए, काम तमात्मी का भक्ति है वहां, कामानुगा उसको हम चाहते हैं, किंतु ये कहना संभव पर नहीं है उनसे, मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए नहीं कर सके। किंतु भावना हुई कि आप ही के जैसा जिस कृष्ण का रूप है उस रूप को गोपियों जैसा ही हम भी उनकी सेवा कर सकें और उसको प्राप्त कर सकें, किंतु लज्जा के मारे वो रामचंद्र जी ने मन ही मन में आप समझ पंचाकल्पतरु है कृष्ण ही है, चंद्र का कुछ भाग जैसे ढका होने पर भी वो चंद्र ही है ऐसे, उन्होंने ठीक है बस। उन्होंने भी कोई ऊपर से वर नहीं दिया, भीतर जैसे भीतर न भीतर इन लोगों ने कामना की मांगा और उन्होंने भीतर भीतर वरदान दे दिया, जोग माया को आदेश दे दिया और जोग माया ने ब्रज में इनका जी गोस्वामी बतला रहे हैं यहां पर, ब्रज में गोपी शरीर में जन्म लेने से ही समस्त प्राकृत भाव दूर नहीं हो जाता, कुछ प्राकृतिक प्रभाव रखता है शरीर में नहीं रहे जो मैं द्वारा है ना, किंतु भावों में अभी कुछ रहता है प्राकृतिक भाव, इसी प्राकृतिक भाव को दूर करने के लिए ही जो मैंने ये खर में उनको आवत रखा। और कृष्ण स्वयं वहां पर चले आए, आने पर अपने आंखों से उनको भीतर में ले जाकर के उनका लिंगन किया और उसका वह जो भाव था वो दूर हो गया। अब फिर तो उनको राशि में उपस्थित
कर दिया, सीता देवी ने संवत नाम है उनराग और नवराज, सीता देवी संवत भेज
कप्तानी प्रदेशन है और भी सुन इन लोगों का हुआ, उसी के लिए तो जन्म देते हैं उपिग्रह से, एक भाव जन्मे अहंकार जन्मे वैसा और नित्य सिद्धाओं का संग, इसलिए सादृश्य देख करके उद्दीपना होकर के तब इन लोगों को जो मैंने सुजोग दे करके और तब वो नित्य सिद्धा जैसे ही ये साधन सिद्धा। ऐसे ही कोई भजन यदि करे तो उनको या तो महाप्रभु जी के परिकरों से या महाप्रभु जी के लीला में टीका हो गया प्रवेश जो माया चिंता, अथवा जब जब कृष्ण की लीला प्रकटित हो गई उसमें किसी न किसी रूप से आ गए, किंतु पहले यही होगा महाप्रभु जी का, रामचंद्र जी का और लोगों का संग होकर के उनकी कृपा से। किंतु होगा कब? जब ऐसे भजन करेंगे तब, बिना ऐसे भजन किए हुए नहीं, उत्कंठा के सहित में अत्यंत आसक्ति के सहित में तदात्म होकर के वैसा भजन, दिन रात उसी की ही चिंता होगी, जैसे ये घर में है और चिंता होना ऐसे ही। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने कहा है इसलिए वहां ये लोग सब समझ सकते हैं, इसलिए कहते हैं जार भाव संसार के लिए सबसे खराब, किंतु गोपियों के लिए यही सबसे श्रेष्ठ संभव है, जो कि और महिषियों की अपेक्षा भी ये सबसे श्रेष्ठ है। ऋषि को सार शिक्षा ने कुछ बतलाया है, गावश्च कृष्णं कनिरुदितमेनुगीत पीयूषमुद्भिः कर्णकूटैः पिबन्त्याः कल्पया कवरास्मतस्तु गोविन्दमात्मनि दिशा सुफलाणीय। तो व्याख्या करते हैं, गावश्च कृष्णं कनिरुदितमेनुगीत, ये गायक कृष्ण के मुख से बंसी ध्वनि को सुन कर के गीत को सुन कर के पीयूष कर्णकूट पिबंत्या, कर्णकूटों से कर्ण के दोनों से कान को दोना बना लिया, ऐसे ऐसे करती है, यदि कोई शब्द होता है तो ऐसे कर ले, इधर आएगा ना उधर ही कर लेंगे, घोड़े और गाय ऐसा ही हो जाए। मानव कृष्ण के मुख से गीत से गंगी से निकले हुए अमृत को कर्ण के दोनों से चस्कों से पी रहे। और उनके बछड़ों की बात तो सुनो, उनके बछड़े जो उनके दूध पी रहे थे स्तनपान कर रहे हैं, सुनो तो उनके स्तन से जो स्नुत माने जो अपने आप चुचुआ रहा है, स्तन पयम कबला स्वस्थु, कबल तो ले लिया, कबल माने दूध का कबल यहाँ ले लिया, और न निकल पाते हैं न छोड़ पाते हैं, और स्तन मुख में है और कान वहां सुन रहा है, दांत दोनों से वो पी रहा है अमृत को, और इसको गले में रख रहे हैं, भूल गया पीना, बस वहीं पर लगा हुआ है दूध का कवर। वो भी महात्मा ने दिशा सुपराश आंखों में क्या है, गायों के और इन बछड़ों के आंसू निकल रहे हैं, पी रहे हैं कान से, यहां का पीना बंद हो गया, गले में अटक गया वो दूध या घास के कवल, और आंखों से आंसू झरने लगे। सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं अनंत पूर्वोक्त मृगों से भी अधिक कृष्ण का संग करने वाली गायें और बछड़े हैं। कृष्ण बंसी वादन करते हुए, और यदि बंसी वादन बंद कर दिया बंसी बजाना, और मृगों के ऊपर में हाथ रखेंगे भागे, बस वहां तक देख रहे हैं। पालतू यदि हिरण हो तो दूसरी बात, जंगली नहीं, और ये गायें और बछड़े सब समय कृष्ण की तरफ, बछड़ों की लोरी पकड़ रहे हैं, लोरी मैंने कल कंबल और सहला रहे, और वो कहेंगे खुजला दो तो हमारा ये और भी कंधा करके कृष्ण के कंधे पर अपना सिर, गायों का भी बछड़ों का, बछड़ों से सख भाव और बछड़ियों से, और गायों से मातृभाव, गायों को माता समझते हैं और इनको सखा सखी समझते हैं, और ये मृग से भी अधिक महिमा मंडित है, कौन उनका कैसा है, और कृष्ण ने जिनको अपने आप पाला है ना बचपन से, कितनी बड़ी महिमा होगी। यदि कहा ना कमले किशंगी पद्मगंधा नाम रखा है, वो नाम कहेंगे और दौड़ते हुए गाय वहां पर कबली भवली गंगे किशंगी चित कबरे, चित कबरा माने बहुत तरह के रंग, उनका महात्मा कौन वर्णन करेगा। बचपन में कृष्ण जब छोटे हैं बुजुर्गों के बल चलते हैं, और चलते चलते गाय के पास में पहुंचते हैं, गाय खड़ी हो जाती है, और कृष्ण ऐसे मुख कर देते हैं, बुजुर्ग का चिंचुआने लगता है उनके मुख में, अपने अताप पीते हैं। इस श्लोक में गावस चौ भी आया है और तू तू कहां है तू मने और चौ मने पहले की अपेक्षा अधिक अतः मृगों से भी अधिक पीयूष पीयूष किसको कह रहे हैं दो पीयूष कृष्ण का मुखारविंद का जो सौंदर्य है वो पीयूष एक और फिल्म गीत में जो पीयूष निकल रहा है उनके मुख से निर्मित होकर के ये दो दोनों में दोनों ही श्रेष्ठ हैं कौन किसी से कम नहीं है। उस पीयूष दोनों पीयूषों को कृष्ण की रूप माधुरी और वेणी माधुरी दोनों का कृष्ण की चार माधुरी है पांच माधुरी चार माधुरी वेणी माधुरी रूप माधुरी गुण माधुरी लीला ये चारों का ही आस्वादन करती है। हिरण भी कैसे रूप माधुरी देख रहे हैं माधुरी कान के द्वारा पी रही है और गुण माधुरी कृष्ण द्रवित होकर के बड़ी कृपा की ओर से उनकी तरफ में देख रहे हैं ना? और कृष्ण का जब ये देखना देखती हैं तो और आकर्षित होती है और लीला माधुरी लीला माधुरी से हाथों से उनको चलाना प्यार करना ये सब लीला माधुरी अथवा राधा कृष्ण सवेरे में शयन कर रहे हैं निशांत लीला और उनकी हरिणी है पुरंगा वो उठ करके बार बार रहा नहीं उसे जाता खोज रही थी कहां गई हमारी स्वामी जी कहां है चारों तरफ में देखती है सत्या करती है जैसे आ रही जल्दी उठो तुम्हारी पुरंगी तुमको देखने के लिए ललायित हो रही है तुम्हारी सेवा करने के बार बार इधर दौड़ती है इधर दौड़ती है मयूर इत्यादि सब सभी लोग ये सब लीला माधुरी कान को उठाकर श्रद्धालु को अंजलि परिपूर्ण करके पाम मनोहर और मधुर कृष्ण से बेनुगी से जो अमृत भर निकलते हैं उसका पान कर विशेष करके गायें सात्विक होती हैं यदि कीर्तन करते हुए जाओ तो खड़ी हो जाए मधुर स्वर सुने तो और वहीं से सुनने लगती है मुख को उठा देती हैं इसलिए कान को उठाती हैं ऐसे ऐसे झुल रहा है कान और उसको उठा दे मानो वो अमृत जो है नीचे गिर नहीं जाए इसलिए उसको ऊपर उठाए रहती है। उन्मुख में भी कराती हैं ऐसे मुख को उठा दिया इसीलिए कि वो गिर नहीं जाए अमृत और उसको पान कर रही है। गोवत् से भी वैसे ही कितना
छोटा पान
बछड़ भी आनंद में विवश हो गया, गाय जैसे होती है। सावा स्नुत माने दूध अपने आप चल रहा है, कुछ माने लगा गया। बल्कि गायें ऐसे दूध नहीं देती, बछड़ों को देख करके नहीं देती, कृष्ण को देखने से ही आए बंसी ध्वनि सुनने से अपने आप दूध देने छोड़ देती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, छड़क आते हैं कृष्ण को देख करके और बंसी ध्वनि सुन करके, क्योंकि वो गोविंद है ना, वो माने वो गो गोपी गाभी बीच में आ गई। यदि अविवेकी पशु जाति की अवस्था ये है तो औरों की क्या दशा होगी? इसलिए गोपियां आती हैं खेत से, इनकी इतनी इनका इतना सौभाग्य, कृष्ण अपने हाथों से इनको संभालते हैं, बंसी ध्वनि सुनाते हैं और ये निकट से कृष्ण को दर्शन करने का सुयोग पाती हैं। इनमें से कोई भी सौभाग्य हमारा नहीं है, ये निकट से जाए कृष्ण हाथों से स्पर्श कर सके। इसलिए यदि हम लोग वो जाति में ही जान लेती और बछड़े और बछड़ियां होती तो हमारा जीवन का सुख
रूप गोस्वामी कृत पद्मावली में है, ये रूप गोस्वामी का ही संग्रह है। श्लोक नंबर 296
नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम दायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे। हे कृष्ण करुणा बिंदो दीन बंधो जगतपति गोपेश राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभांशु भेदे नमामि हरि। आ देविका तू भर गदयाद्यवाचा जाची निपत्त भूमि दंडवत भतरती अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य हरिभिहे तव गणेशन। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं यज्ञं जागुतरूपि संविदधतं पट्टम्बरस्य वृंदारण्यनिवासिनं मुदिलसत् नमस्ते कृष्णाय तवैवास्मि तवैवास्मि न दिवामि त्वया विना इति विज्ञानराशि
सुन करके पालकी रुकवा दी और बोले उनके चरण में जाकर के दी बोले जिससे मैं इसका अर्थ नहीं समझा अर्थ नहीं देख जाता। उन्होंने बताया जैसे मैं कह रहा था कि कौन ऐसा मूर्ख है जो पैसा दे करके नागिन को ले आकर के यहां वो तो काटे भी तात्पर्य क्या है ये विवाह करके इतना पैसा खर्च करके ये जो लाया ये काली नागिन है और तुम्हें जरूर डसेगी। ये संसार वाले ऐसे उनको समझाते ही बस पालकी वाले को कहा कि पालकी ले जाओ लौटा ले जाओ इस पालकी से मुझे जरूरत है और वो रोती रोती पालकी में लौट गई है। यही रामचंद्र जी हैं श्रीवास आचार्य ने उनको मंत्र दीक्षा दी समाज उनका विरोधी बन गया ऐसे विवाहित अभी नौजुवक और उसको ये संसार से विरक्त कर दिया। ऐसे ही लोग साधु संत होते हैं उनका काम दूसरा नहीं ऐसा ही करते ऐसा जो समझे तब तक वो सुखदेव गोस्वामी की हरि कथा सुने उन्हीं के ये छोटे भैया थे ये बासुली जी की या दुर्गा की उपासना करते थे
बासुली देवी
मैंने कोई दुर्गा की ही कोई नहीं चिंदी पूजा को पूजा करते थे देवी जी की पूजा करते थे। एक बार खूब बीमार पड़े बड़े जोर से इन्होंने समझाया कि तुम उनकी पूजा छोड़ करके राधा कृष्ण की पूजा करो छोटा भैया मानता ही नहीं था मरने मरने हो गया अब जब बचने की कोई आशा नहीं रही एकदम बचने की आशा नहीं रही अरे अब तो तुम मर ही रहा है अब तुम मरेगा जरूर डॉक्टरों ने वैद्यों ने सबने कर दिया अब कोई इलाज नहीं अब तुम एक दो दिन में मरेगा पिताजी सारे भले मानुष मैं कहता हूं हमारे ऊपर भी विश्वास करो तुम एक बार तुम तो बहुत कवि है बस तुम भगवान का चरणों में शरणागत होकर के और इन्हीं का प्रयोग करो तुम ये मंत्र ले लो गुरु जी से उनके कहने से मंत्र उन्होंने खुद ही दे दिया गुरु जी के माध्यम से हरे कृष्ण का और जब जब ठीक हो जाना तब गुरु जी के पास ले सके बस उन्होंने वो हरे कृष्ण आरंभ किया और बस एकदम ठीक हो गए जब ठीक हो गए तब चले गए श्रीनिवास आचार्य के पास में और तब फिर गोपाल मंत्र इत्यादि की दीक्षा मिली तो सबसे पहला यही पद बनाया भजन हुए मन बाकिया भजन हुए मन श्री नंद अभय चरण आरंभ देवता देवियों का अभय चरण नहीं है कृष्ण चंद्र ही है भजन मैंने सत्य लिए प्रार्थना और यही कीर्तन लिख करके जीव गोस्वामी के पास में भेज दिया। जीव गोस्वामी उस समय में नवदीप मंडल ब्रजमंडल और क्षेत्र मंडल तीनों एक छत्र वैष्णव सम्राट थे सब लोग इनकी तरफ में देखते थे कोई सिद्धांत विचार जो कुछ होता बस इनके पास में आते तब तो वो मीमांसा करते जो ये कहते थे वही तो उन्होंने लिखा कि बेजा पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए और सब बिंदा करके वैष्णव को दिखलाया और दिखला करके तब उनको वैष्णव कवि के रूप में स्वीकार किया और पत्र में लिखा तुम बीच बीच में ऐसे ही सुंदर सुंदर पद ये वैष्णव लोग जो पद्य लिखते थे उसको कहते हैं ब्रजबुली। ब्रजबुली माने बंगला और हिंदी ब्रज माने ब्रज की बात जैसी भाषा दोनों को मिला करके लिखते थे। साधारण आदमी इसका अर्थ नहीं समझे, बंगला बंगाली भी नहीं समझेगा और इधर ब्रजवासी नहीं समझे, दोनों का मिला हुआ रूप लेकर के वो तो वही उन्होंने लिखा है। अभय चरण देख लिया ये वही कृष्ण ही, इनकी सहारा लेने से ही मैं ठीक भाव सागर से पार कर गया। अपनी अनुभूति के ऊपर में लिखा थे दुर्लभ मानव जन्म सब हुए भव सुनि सबके लिए कह रहे हैं यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। चौरासी लाख योनियों के बाद में यदि पुण्य पुंज सुकृति होती है तो मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म कहां ये जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष में भी उत्तर भारत में भी ब्रज में गदीपुर और उधर में नवद्वीप अभिन्न होने के नाते तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संग पर भाई कौशल या भव सिंधु दूसरे जन्म में नहीं तरा जा सकता, मनुष्य जन्म नहीं हो सकता और भी सत्संग नहीं होगा। सत्संग माने भगवान की जो चर्चाएं होती हैं उसी में होगा और नहीं होगा। शीत आत पात बरिशन एक दिन ज्ञात दिया है एक दिन ज्ञान में जागे विफल से बिन कृपा न दूरे जाने चपल सुफल बोला सी आज का दिन जैसे सी आत मैंने गर्मी
सुना पुनंद उर्वाय पदाब्जराग श्रीकुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मरुजतूण रूषितेन विभ्यंत आनन कुचौश्च हौस्तदादे सनातन गोस्वामी जी श्रीमद्भागवत से इसी श्लोक को ले रहे हैं। परीक्षित महाराज जी अपनी मैया को अंतिम समय में जिस समय में सांप काटने वाला है 10-5 मिनट पहले एक घंटा पहले सुना रहे हैं। भागवतामृत की कथाएं समाप्त हो गई और उनको मैया को उपदेश दिए हैं कब मरने वाले हैं। अब 1-8 घंटे में ही सांप उनको काटेगा और वो मरेगा बीच चढ़ेगा और उस समय में मैया भी उनसे यही पूछ रही है बेटा हमने भागवत को ठीक से समझा नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने जो बतलाया वो समझ में नहीं आया
मरे ही अधिक सेवन करेगा तो क्या होगा। उसी तरह से जो कोई संसार का सुख है उसकी अधिक सेवा की जाए एक मात्रा तक है उसमें मालूम पड़ता है सुख किंतु वो भी दुख ही है। इसलिए चपल सुख थोड़े से सुख के लिए वो भी लौ मात्र सुख के लिए विफल बेकार तो वो भी मिलता नहीं उसके लिए तो कर रहा है किंतु होता नहीं है विफल। कृपण पूर्व जब उन लोगों के सामने रह करके कृपण माने क्या है जो इस जगत में जन्म लेकर के आत्मा का अनुसंधान नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं किया, भजन नहीं किया, वो कृपण है। जो वाक्य आप कर्म गाली अभिधि प्रासमान लोकात्ति सब कृपण वो कृपण। और दूरजन भगवान से बहुत दूर है, इसलिए दूरजन दूर है, जो निकट है वो इनमुख है वो कम। और दूरजन इसमें दूरजन लिखा है, और दुर्जन मैंने दुष्ट जन, जो भगवान का नहीं भजन करते हैं वो जितने ईमानदार सत्यवादी सचरित्र जो कुछ हो वो सब दुर्गुणों के आकर है, जिसमें सब दुर्गुण है किंतु भगवान का भजन करते हैं उसको धर्मात्मा सुन। थोड़े दिनों में ही वो धर्मात्मा हो जाए, क्षिप्रम भौत धर्मात्मा सत्सक्षम तिरिगच्छत, इसलिए संत लोग उनको भी संत ही कहते हैं। ये धन जवन परिजन पीछे की आचे पर की किरे, ये धन नहीं है, ये क्या करता है, धन आत्मा को वर्ण करता है, नित्यार्थ देता है ये धन, परमार्थ नहीं है ये, परमार्थ नहीं है ये, उसको हरण कर लेता है, कैसे उसको संचित करने में, उसको रक्षा करने में सब समाज में लगा, और अंत में छायाबाजी की तरफ में वो निकल जाता है और इसको दुख दे जाता है। सबसे ये छवि है धन, धन रहेगा ना तो मरवा देगा, देखते नहीं आजकल लोग आदमी अधिक किसके मर रहे हैं, 10,000 रुपया लेकर के चलते हैं और किसी को पता लग गया तो फीस देकर थोड़ी से पैसे देते, थोड़ा सा कुछ चीज है उसके लिए मार देते हैं, स्टेशन में गैंग रहते हैं चोरों का, ये सब क्या कुछ भी लेकर के चलेंगे आपके पीछे 3-4 लग जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, और कुछ खिला देंगे, चाय खिला देंगे, पकौड़ी खिला देंगे, कुछ खिला देंगे और मार देंगे, रास्ते में चलते हुए कहीं किसी अजंती के हाथ से कुछ मत ले, भूखो रह जाना, किंतु उनका हाथ का पानी चाय कोई भी चीज फल महाप्रसाद भी रहे, महाप्रसाद भी मत लो रास्ते, आजकल कोई ठीक नहीं है। ये धन कैसा है, पीछे की आक्षे पर तिक्री है, धर्म पर प्रतीति है, प्रतीति है, विश्वास है नहीं, सबसे दगाबाज है कोई, आज इसी के लिए सब कुछ चल रहा है। वैसे ही जवन जवन चिरस्थाई है नहीं, बस चमक दमक थोड़े दिनों के लिए बस समाप्त, पुत्र भगवत भजन नहीं करता है तो पुत्र नहीं, इसका ठीक करी, और परिजन परिवार के दूसरे लोग, अभी देखो भजन मत कर, युवावस्था में अभी धन उपार्जन करके संसार भोगो, और जब बुरा हो जाएगा तब भजन कर, यदि रात में भजन करते हैं तो सब घर वाले लग जाएंगे दूर भी, मत भजन कर, कोई भी नहीं कहेगा अपना बंधु ये सब भजन कर, इसी की आशे पड़ते, इसमें कोई विश्वास मत रखो, एक तो ये क्षणमात्र में आप विरोधी ये सब है, कमल दल जल जीवन तल भजन हरिपद नीति रे, कमल जैसे है उसका पत्ता होता है, कमल दल
पत्ता,
पत्ते के ऊपर में पानी डाल दो गोलाकार बन जाता है अंडा का छोटे छोटे, और
हवा के
उसी के ऊपर में हवा के झोंके कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर, तल अभी है एक मिनट में फिर दूसरे से, ऐसे ही जीवन कमल पत्ते के ऊपर में पानी के बूंद की तरफ में ही लगा है, फिरते डूबते रहते हैं, उसकी कोई स्थिरता नहीं, कभी इधर चले जाए कभी इधर, ऐसे ही जीवन चालू में जाएगी। कुछ उपलब्धि पर उन्होंने उपलब्धि करके लिखा है। भजन मुगल पद, इसलिए प्रतिदिन भगवान का भजन करो। कैसे भजन करूं? भगवान अनुग्रह करके हरि कथा और हरिनाम के रूप में अवतरित है। संसारिक कथाएं जो शब्द सामान्य है, भगवान का नाम वैसे ही शब्द साधारण नहीं है। जैसे भी अरुचि रुचि अनर्थ सही जैसे भी करो, वो अपना फल जरूर देंगे। शुद्ध रूप से करोगे तो शुद्ध फल, अशुद्ध रूप रहने से संसारिक फल, मुक्ति, ये सब देंगे। नमः अपराध युक्त, अपराध युक्त यदि नाम करोगे तो संसार में अर्थ रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिवार ये सब मिल जाएंगे नमः अपराध से। और यदि नमः भास करोगे तो संसार से मुक्ति हो जाएगी, जो बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिलती। आप प्रेम से करोगे तो प्रेम भक्ति मिले, ब्रज के भाव से करोगे तो ब्रज भक्ति मिले। तो समण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दर्शन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। गोविंद दास कहते हैं बस इसी की अभिलाषा है और कोई चीज की। बस उन्होंने इनको बड़ी सुंदर उपाधि दे दी और तब ये बनाने लगे। इनके पद बहुत से हैं, बहुत सुंदर और रश्मि इनके पद है। काफी ऐसे ही चरित्र है जितने ये सब हैं। कल भट्ट जी की मैं पढ़ा रहा
श्री भट्ट के बारे में,
मैंने उनका और कुछ नाम है, मैंने श्री उनका नाम के ऊपर भी पढ़ा है। वैसे ही सब अद्भुत, ये तो ऐसे कवि हैं। सूरदास भी उनके सामने कुछ नहीं लगेंगे, और सूरदास और अष्ट छाप इत्यादि के, ये गोविंद जी है, नरोत्तम ठाकुर जी है, ये चंडीदास
विद्यापति,
ये तो ब्रज के उपास,
ये
बासल्य तक उन्होंने ये वर्णन किया है। और अष्ट छाप के कवि हमें ये कल जो उगा रही थी
उद्धव
संदेश वाला उन लोगों ने इतना रस तो उन्हें नहीं किया, नहीं हो सका जितना कि इन लोगों ने किया पदावली में। बहुत ही सुंदर, यदि भक्ति रस ब्रजवस रस यदि चखना है तो इन कवियों चंडीदास विद्यापति रोकम ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर ये सब, ये भी अप्राकृत ही है। सूरदास को भी प्राकृत मत समझना, भविष्य के लिए ये सब कवित्व संभव नहीं है। वो तो आंख नहीं थी और सब कृष्ण का रूप देखते हैं, भले बने हो ना। आज तो आपने सब कपड़े हटा दिए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। कित छोड़ी वह मोहन मुरली,
कित छोड़ी तो गोपी,
और सबको छोड़ करके अकेले कपड़े सब छोड़ दिए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज ऐसा जैसा ऊपर भी ऐसे ये लोग थे। किंतु जिस प्रकार से ये चंडीदास विद्यापति जयदेव ये कृष्ण के और गोपियों संबंधी श्रीमद् भागवत का ये सब भाव लेकर के वर्णन किया, दूसरों के लिए संभव नहीं, कभी नहीं सकते। उनको लज्जा आएगी या वो पहले ये अनाधिकार चर्चा है, ये भावना ही नहीं कर सकते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अप्राकृत कवि है, तो ये तो हो गया था ना, धन्यवाद समूह मत
ये हो गया गावस्तम का निर्गत भी है।
राष्ट्र के डागलों की बात करी, उसे वो आगे बढ़ गए तो नदी की बात कहा। गोपियां तो आई थी ये दूसरों को पता नहीं लगने देंगे, किंतु उनका भाव नदस पदार्थ प्रधार की मुकुंदगी में सब कुछ अपने आप, जब मालूम हो गया तो उन्होंने भाव को ढक दिया। कैसे करता आकाशचारी मेघों को का वर्णन कर अपने भाव को ढक दिया, जिससे कि लोग समझ न सके। क्या वो संचार प्रेम कृष्ण से बंधुत्व स्थापित करके, और कृष्ण जब चलते हैं तो मेघ जैसी छाया करके और उनको और प्यारे बंधु के लिए सुशीतल पानी अपने आंखों के आंसुओं से उनको मेघों की। अब तब जब उनसे और नहीं रहा गया तो फिर एक निकल आया रावस चतुष्ट मुख निर्भुत
नहीं इसके बाद
गायो बतंग बिहगान नो योगन इसमें कुछ निकल आया भाव दिल वही। फिर मैं उनको ठकने एक बोल रही है प्रकाश कर रही है, फिर एक को गायों का भाव आया, गायों के भाव से उनको ठका। इसमें बात्सल्य की भावना लिया और सत्य की भावना लिया, वो कृष्ण के साथ में उनकी कितनी सखा का भाव है, बछड़ों के साथ इतना प्यार करते हैं बछड़े इनको, और गायें मां जैसी इनकी कैसी सेवा। उसके बाद में फिर कहने लगे वृंदसो वृंदसो भज विषामृगो बेन्द्रृत चेत दंत दृष्ट कवराधित करना निर्जित लिखित चित्र निवासन चौपाई के तरफ ये मृग गाओ वेन बात चेत कितना कहूं गोपिया सखी से गा रही नंदनंदन जिसमें बेनु बात वादन करते हैं उस समय बढ़ते हुए भी चित्त से आकृष्ट हो जाने के कारण ब्रज के वृंदसो ब्रज वृष ब्रज के जितने वृष हैं वृष माने बैल बैल और सांड बैल ही व्यापक उसमें सांड सब आ जाए गाय का तो आगे बढ़ने फिर भी यहां पर जाते हैं मृग और गावो गाय इसके अतिरिक्त सभी जितने पशु पक्षी हैं सब लिखित चित्र निवासन लिखित चित्र मैंने किया जैसे चित्र अंकन कर देते हैं मानो स्पंदन वाली चित्र लेखे के समान हो जाते हैं कभी भी हिल डूल नहीं सकते एकदम ये तो चलने फिरने वाले जंगम ये जड़ हो जाते हैं। कैसे ये क्यों ऐसे हो जाते हैं दंत दृष्ट कबला भीतर दांतों में कवल ये मुख में रखा है तो मुख में ही कवल रह गया और बंसी बज रही है और सुन रहे हैं मुख बंद कर दिया घास इत्यादि जो उनके मुख में है जो कुछ खाने की चीज है बस वैसे ही दांतों में ही पड़ा रह गया और कानों को भी तो करना और कानों में कृष्ण की बंसी की ध्वनि को बस कभी ऐसे ऐसे थोड़ा सा जिधर से सब गाता है गली में थोड़ा सा खड़े कर, इसलिए गिर न जाए इसलिए नीचे नहीं कर, इस तरह से बोलू। जब पशु पक्षियों की ये बात है तो गोपियों की क्या बात होती है, तो गोपियां करेंगी जैसे हमारा दुर्भाग्य जो हम लोगों का आगे सुजोग नहीं होता। यहां पर गायों और उसके बाद में बैलों को और उनके सही पीछे से मृगों को, ये सब पशु होने के कारण गोपियां कहती हैं एक तरफ में अपना दुर्दय और दूसरे तरफ में इनका महत्व, जो कृष्ण वेणुगीत और कृष्ण के मुखारविंद का सौंदर्य का क्या ये है, शांति के निकट शांति के लिए परस्पर चित्त बहलाने के लिए ये सब कृष्ण की लीला कथाओं का गान कर रही है। दिवा है वृंदसो हे सखिया, बड़ी विचित्र घटना देखो, ब्रज में वृष मृग और गाय दूर में रहने पर भी चल रही है, बहुत दूर बड़े मन से चल रही है, हरी हरी घास किरण विचरण कर रही है, बैल भी इधर दूर में है और जहां कृष्ण की बंसी हुई ध्वनि, बस उनका मानो कृष्ण ने चित्त ही चुरा लिया। दौड़ करके कृष्ण के निकट पहुंच जाते हैं और तीन होकर के चित्र की भांति खड़े हो जाते, कोई भी स्पंदन इत्यादि में नहीं आ जाता। कैसी स्थिति, ये सभी अनाथ मुक्त है, ब्रज में चिन्मय है, कृष्ण की प्रकट लीला का समय का ये है, कृष्ण के प्रकट लीला में ब्रज में किसी प्रकार से भी आना कितने सौभाग्य की बात, सौभाग्य का हम लोग अभी भी है, अभी तक भागवत इत्यादि की चर्चा में हरि कथा हो रही है, कुछ दिन के बाद में ये सब विलुप्त हो जाएगा और सब चीजें रहेंगी, सब कुछ रहेगा, किंतु ये भक्ति नहीं रहेगी, विशेष करके ब्रज की भक्ति थी नहीं, साधारण भक्ति थी नहीं, इसलिए इसी जन्म में भजन करके उपलब्धि करके जाना है और इसी जन्म में दूसरी विद्या सीखने गया तो देखो जीवन नष्ट हो जाएगा भाई, कैसे भजन होगा, आज तक भगवान को लोगों ने कैसे पाया, भजन से पाया, सत्संग से पाया, उनकी सेवा कर, हम लोग क्या सोचते हैं, हम अपने दिमाग को अपने बुद्धि को विद्या को इतना बढ़ा लें जो भक्ति को समझ लें, ये कभी भी होगा, कोटि कोटि जन्मों में नहीं हो सकता है, इस चीज को समझो, दुर्गम संघ को समझो, इसलिए प्रयास होना चाहिए इसी जन्म में भजन मने चित्त लगा करके श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन इत्यादि जो भक्ति की बातें हैं, एकांतिक रूप में राधा कृष्ण की सेवा है, इससे साधु संघ में इनसे भी नहीं होगा, श्रवण कीर्तन से भी, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन से भी नहीं होगा भाई, यदि वही सब चीजें साधु संघ में होगी तब क्या वो अभी अभी पढ़ा ना,
जन्म सत्संग तरह
सत्संगे दुर्लभ मानव
जन्म सत्संग
तरह सत्संग, सत्संग माने क्या है, हम सत्संग को छोड़ करके यदि कुछ करेंगे भाई गड़बड़ हो जाए, इसलिए ऐसे ही भाव लाने की हमको चेष्टा करनी चाहिए, नाम को बुद्धिमान होना है, नाम को विद्वान होना है, कुछ भी नहीं होना, हमको भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर का एक आज वो पूछ रही थी, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है यदि सब कुछ अनर्थ इत्यादि दूर हो जाए तो एक प्रतिष्ठा रहे, प्रतिष्ठा की आशा। तो जितने गए हुए अनर्थ है सब ठीक आ जाते हैं, सब आ जाएंगे फिर से। इन सब चीजों को भी दूर करके अब तक इसमें हम अपनी बुद्धि से पढ़ करके ये सब जो बता रहे हैं ये अर्थ नहीं ले सकते कभी भी। विद्या के द्वारा ये सब नहीं होगा। मथुरा में टॉप के भारत वर्ष के सबसे बड़े बड़े विद्वान, टॉप के संसार में अद्भुत अद्भुत विद्वान है, किंतु ये सब जानते हैं हम लोग तो कुछ अनुस्वार विषय को कुछ नहीं जानते। उनको फुर्सत नहीं है यह सब चीजें, उनकी विद्या किस लिए? पैसे की विद्या, पैसा होता है। इसलिए ये सब चीजें भक्ति से आई। बंसी बजी और गाय बैल मृग और दूसरे जितने हैं उनका बंसी से कृष्ण ने चित्त चुरा लिया और वो कृष्ण के लिए उस शब्द का पीछा करते करते कृष्ण के तरफ में एक ही नहीं दल के दल झुंड के झुंड शब्द। और चित्र लिखित एकदम खड़े हो गए कृष्ण की तरफ में देख रहे हैं, दंत द्वारा ही तीर्ण धारण कर लिया। गाय और बैल जो है भैंसे हैं और सब हिरण भी तो घास ही खाती है, वो चल रही थी और जन्म सुनी तबस्त भूल गई निकलना, बस यही प्रधान कर रही इधर निकले हुए हैं, मुख भरा हुआ है, गला में वही सही पड़ा। गोपियां देख रही हैं भाव नेत्र से आश्चर्य चकित होकर, गोपियां भूल गई हम भी ऐसे ही हुई, रोटी पका रही थी रोटी हाथ से छोड़ दिया, मान लीजिए कि कपड़ा पहन नहीं तो कपड़ा ऐसे ही धारण करते, अपनी तो भूल गई किंतु इनकी साधारण चीजें इनको दृष्टि में आ गई अद्भुत। भक्षण करते समर्थ नहीं हो रही है, खाने के लिए समर्थ नहीं, बस जो जैसे जिस स्थिति में बस वैसे। बेटी था दुशन के समय में दोनों कानों को ऊपर उठा दिया है, उनको देखने से ऐसे मालूम होता है ये निद्रित निद्रित है, इसमें सब
निद्रिता
निद्रिता है नहीं, मालूम क्या हो रहा है आंख बंद कर दिया है, कान खड़े हैं और ऐसे मान लीजिए चित्र में जैसे कर देते हैं वहां इधर उधर गिरती ऐसे होता है। भक्ति होने से ऐसा ही होता है, अंततः प्रेमा भक्ति होने से ऐसा एकांत कृष्ण में चित्त लग जाएगा। इन सब चीजों को बंसी के ध्वनि के रूप में जो करी हरी कथाएं उसको श्रवण करके एकदम चित्र की भांति निद्रित है अथवा अथवा चित्र लिखित चित्र निवास निद्रित है अथवा लिखित चित्र के समान ही है, चित्र ही है कोई जीव जंतु नहीं है। इस प्रकार से प्रेम मोह में सभी क्रियाएं बदल जाती हैं, चेतन अचेतन और अचेतन चेतन जैसा जिसकी सुकृति होगी ये सब कथाएं उनके पटल पर सब चली आएंगी अपने आप, उनको अच्छी लगेगी। सबको अच्छी ये कथाएं नहीं लगेंगी, उन्हीं को लगेंगी जिनका हृदय कुछ कुछ निर्मल हो रहा है। आज जो आए हैं सुनने के लिए वो कुछ विशेष होता है, आज वर्षा हो रही है, ठंड पड़ रही है, आराम के साथ में घर में रहने की है, किंतु जो लोग आज की कथा में आए हैं वो उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो सुख के दिन में आते हैं। उनकी हरि कथा में उतनी रुचि है कि नहीं नहीं कहा जा सकता। दूर से मैंने क्या यही सब गुरु जी कहते थे दुर्दिन कौन सा है या श्रीमद भागवत में होती है सब दुर्दिन कौन सा है यदि हरि कथा में और हरि कथा में बाधक है वही दुर्दिन है जिस दिन हमारी कथा नहीं सुनेंगे दुर्दिन। प्रभुपाद अपने अंतिम दिनों में उन्होंने लिखा है अभी उस दिन देख रहे थे ना हम लोग गौरिया उसी में देखा बहुत मूल्यवान चीजें उसमें सब है करें जैसे हमको तुम लोग मना करता है हरि कथा मत करो मैं मर जाऊंगा यदि हरि कथा बोलते बोलते यदि मैं मर जाऊं तो ये अच्छा है ना हरि कथा ना बोलू हम मर जाऊं कुछ दिन मर जाऊं बड़े दुखी होते थे उन्होंने अपने शेष अब लोग मना करते थे सब ये कुंज बिहारी विद्याभूषण माने भक्तिविलासपीत महाराज और सब लोगों को हटा देते थे ये अधिक बोलेंगे हार्ट फेल हो जाए कुछ भी हो जाए और ये दुखी होते थे अच्छा तुम लोग चाहते हैं कि मैं हरि कथा मैं जन्म 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 लेकर के आप वो हरि कथा बोलता हूं उन लोगों की स्थिति हम लोग नहीं समझते हम चाहते हैं हम हमारा अपना जैसे उन लोगों की किसी स्थिति में रहता है कुछ आभास इस जन्म में कुछ लिया जा सकता तो उनकी ये गोपियां वर्णन कर रही है किंतु गोपियां की स्थिति उन लोगों से कितनी कितनी अच्छी होगी कितनी उन्नत होगी ये वर्णन कर रही है किंतु पशुओं की भी ऐसी दशा होती होगी कोटि कोटि जन्म का सौभाग्य होगा जब उस समय में गाय भैंस ये सब होकर के आएंगे कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन रहे हैं क्यों बहुत विशेष श्रवण से कृष्ण विच्छेद मरण भयो आशंकमान भैया से बेणु और असमित बल प्रयोगे अग्रवर्ती पद द्वय द्वारा उद्धव कर्ण पत्र उन्मूलित करिया कर्ण रंग आच्छादित करिया कहते हैं कि दूर से उन्होंने देवी बंसी धर्म स्वी और रस्सी एकदम ऊंचा कर दिया कान एकदम खड़ा कर दिया कृष्ण विच्छेद मरण भय उपस्थित हो गया कृष्ण के विच्छेद में मरण भय और न सुनने के निमित्त जब सुनाई नहीं पड़ता ना तो क्या करते हैं बल प्रयोग अग्रवर्ती पद के द्वारा दोनों पैरों को के द्वारा और ऐसे उठा दिया पैरों को उन्नमित कर दिया गला और ऊंचा कर दिया किधर से शब्द आ रहा है जब यदि पीछे भी उसमें हो गया और बस ऐसा उठा करके कानों को भी फिर उधर ही लेकर के खड़ा कर दिया इसी तरह से भक्ति करने वाले लोग जहां भक्ति का तनिक भी कोई संबंध रहे भक्ति की बातें हो सत्संग हो उसमें ऐसी हरि कथा सुन करके अपने जीवन में गैलोज ये दिवस ना शिवया यदि कृष्ण की हो गए गैलोज जल्द दिन जाए गुरु जी के समय में गुरु जी के साथ में रह करके उनकी जो वाणियों को सुनता था और फिर कभी मिलेगा नहीं ये जीवन में नहीं मिलेगा जो बातों को हम लोगों ने सुना उसकी याद करके हम लोग रोए और रोते कब वैसी सब बातें हैं उनकी लिखी हुई बातों को सुनने भी इतना और साक्षात रूप में कह रहे हैं और उसको सुन रहे हैं मतलब तो उसका कैसा प्रभाव मैं तो देखता हूं उस समय हम उतना महत्व नहीं हम लोग जानते थे अब महत्व समझ रहे हैं सत्संग का हम लोगों को सत्संग करने के लिए अब पुस्तकों के अतिरिक्त और कोई संग नहीं मिलता। अब उसके लिए लगता है कि ऐसा कौन दिन होगा जो कुछ कोई हमको सुनाए। जब सुनते हैं जगत की बातें, बड़े बड़े पाठों की बातें सुनकर के भी दुख होता है, वो सब चीजें कहां ना सब। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सनातन गोस्वामी जी के टीकाओं, कहीं भी मिलेगा ये सब चीजें? कहीं नहीं मिलेगा। कुछ दिनों के बाद ये सब चीजें लुप्त हो जाएंगे, ग्रंथ भी लुप्त हो जाएंगे। जवाब थोड़ी सी कभी कभी सुनाई पड़ता है, जब थोड़ा सा कुछ बंद होने लगा, अब दो चार पैर आगे जाकर के फिर कान ऐसे उठाया ना, दो चार पैर और आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां पर उपस्थित हुए, जहां पर ध्वनि जहां से निर्गत हो गई, कृष्ण को देखा, कृष्ण के एकदम निकट में पहुंच करके मुख में तिल भरा है, इतना दूर से यहां आई है, फेंक दे होश में, भीतर निकल जाए तो भी होश में, सब एकदम जंत्र की भांति हो गया। या तो निद्रित है अथवा लिखित चित्र की भांति वो खड़ी हो गई। गोपियां देख करके हम जगत हो, कैसी विचित्र बात है। अब पहले तो वहां से केवल ध्वनि सुन रही थी मीठी मीठी, अब क्या देख करने लगी, अब कृष्ण का ऐसा अपूर्व माधुर्य रूप दिखते हैं, रूप माधुर्य का भी पान करने लगे, और अब दो तरफ से पान करने लगी, इधर आंखों से भी पान करने लगी, दोनों से पुनः पुनः बहु ध्वनि सुनने से परम प्रेम आविर्भूत हुआ, अब प्रेम से चित्त द्रवित हो गया, और द्रवित होने से वो प्रेम द्रवित होकर के आंखों के माध्यम से गिरने लगा, प्रेम प्रवाह आंसुओं के रूप में झरने लगा, मृतवत होकर के खड़ी है केवल, अपने आप आंखों से आंसू गिर रहे हैं। यहां पर जाति का एकत्व चित्रम एक वचन हो गया, चित्रम एक वचन है, चित्रम
चित्रम
ओके,
चित्रम चित्रे चित्रानी,
हाँ चित्रम चित्रे चित्रानी, तो चित्रानी होना चाहिए था, किंतु गांव का एक जाति है ना, मृगों की एक जाति है, जाति एक होने से एक वचन दे दिया, व्याकरण चीज कोई कह देने व्याकरण वालों के लिए वो तो अरे भाई चित्रम एक वचन क्यों हो, बहु वचन होना चाहिए, उन व्याकरण वाले लोगों के लिए ऐसा दे दिया। अथवा प्रेम मोह में परस्पर के जो कीर्तन कर रहे हैं उसमें होश आवास नहीं है, क्या कहना चाहिए, कुछ भी होश आवास नहीं, प्रेम के मोह में परस्पर संकीर्णता अभाव, सकले एकत्व, पशु पक्षी जितने सबका एकत्व एक साथ में कर दिया, श्रोता के रूप में एक कर दिया, यह मुंह है प्रेम का। यहां भी पूर्व श्लोक की भांति तात्पर्य भी ग्रहण करने पड़ गया, अर्थात गाढ़ी वृष मृग यदि एक प्रकार प्रेम मोह दशा उपस्थित है तो सभी एक प्रेम में आ गए, वहां पर जाति और पाति का ये सब कुछ ना रख करके एक प्रेमिक
प्रेम जाति
या प्रेमी बस प्रेमी हो गए। ये गायें प्रेमी है,
मृगा प्रेमी है,
मृगा भी प्रेमी है, एक जाति हो गई, यहां पर सब प्रेमी लोग उपस्थित हुए हैं, स्त्री पुरुष का यहां पर कोई विचार नहीं, बालक वृद्ध सब जितने स्त्री बालिका जो कुछ है सब एक जाति, श्रोता श्रोता क्या वचन है, श्रोता एक, ऐसे ही ये सबको एक मिल गया है। महाभारती ब्रज देवी गहर की दशा भी दे, अरे जब ही हिंदुओं की ये दशा है तो गोपियां जब ये कथाएं बोल रही होंगी परस्पर में, उनकी आंखें कैसी होंगी? हृदय में भाव उथल उथल हो रहा होगा, कृष्ण के विविध प्रकार रूप नव नवायमानमयी स्वरूप देख रही, और वंशी ध्वनि भी उनके कानों में कर्ण गोचर हो रही। कैसे? मूर्छना आरोह अवरोह ये सब कितने भावों को लेकर, न जाने क्या क्या वंशी कह रही है उनसे। इसलिए गोपियों की भावना उस समय में महाभाव की दशा है। इसी तरह से हमारे सनातन गोस्वामी इस लोगों को वर्णन कर रहे हैं। आज बहुत देर हो गई, आज ठंड भी बहुत है।